نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم طلاق کے مسائل بک میں سے اگلا ٹاپک الطلاق فی ضوء القرآن طلاق قرآن مجید کی روشنی میں یعنی قرآن پاک کی آیتوں کی روشنی میں اگر دیکھیں تو طلاق کے موضوع کو کیسے دیکھیں گے دو کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں ضیاء کہتے ہیں روشنی کو تو قرآن کی روشنی میں طلاق کا ٹاپک کیا ہے آئیے اس کو غور سے سمجھتے ہیں کچھ مسئلے بھی نہیں بھی سمجھ آئیں گے نا ڈونٹ وری اینڈ پہ پوری طلاق اے ٹو زی آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گی اور اس پہ ایک لیکچر بھی ہے نکاح سے طلاق تک جو ہم اپنے سبیل الجنہ میں بھی سنواتے ہیں تو الحمدللہ اس میں سٹیپ بائی سٹیپ سب کچھ ہے لیکن ابھی جتنی باتیں آپ کو سمجھ آتی ہیں اس کو سمجھ لیجئے دوران حیض طلاق دینا منع ہے یعنی اس کو انگلش میں لکھ لیجئے پیریڈز کے دوران طلاق نہیں دینی چاہیے اچھا اب آپ کے ذمہ فوراً سوال ہوگا کہ پھر کوئی دے دے تو ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی ہو جاتی ہے لیکن نہیں دینی چاہیے ٹھیک ہے آپ اپنا جملہ پورا کر لیں پھر غیر حاملہ کون عورت ہے جو پریگننٹ نہ ہو اور مدخولہ عورت مدخولہ کون ہے وہ عورت جس کا شوہر کے ساتھ تعلق قائم ہو چکا ان کی طلاق کی عدت 3 طہر یا 3 حیض ہے بشرطے کہ نابالغ بچی جسے بھی حیض آنا شروع نہ ہوا ہو یعنی ابھی کوئی بچی پیوبرٹی سے پہلے دیکھیے ایک بات خود ہی پتہ چل گئی کہ بلوغت سے پہلے بھی نکاح ہو سکتا ہے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا تھا یا پھر عائشہ کو صحیح کر لیجئے اگر مس پرنٹ ہے آئس کا لفظ کہاں سے ہوگا یاس نا امیدی آئس قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورۃ طلاق میں عائشہ وہ عورت ہوتی ہے جسے زیادہ عمر کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا ہو انگلش میں کامن ورڈ ہے وہ سمجھ آ جائے گا مینو پوز کے بعد پیریڈ سٹاپ ہونے کے بعد کی عمر یا وفات شدہ شوہر والی نہ ہو کیا پتہ چلا اس جملے سے کہ ایسی عورت جو پریگننٹ نہ ہو لیکن شوہر کے ساتھ زندگی بسر کر چکی ہو اس کی عدت 3 طہر ہوگی یا 3 حیض 3 طہر اور حیض میں کیا فرق ہے سمجھ لیجئے یعنی طہر کہیں گے نا تو پیریڈز ختم ہونے کا پہلا دن طہر پاکی کو کہتے ہیں نا یعنی اس میں عدت شروع کہاں سے ہوتی ہے کاؤنٹ ہوتی ہے جس دن عورت پیریڈ سے پاک ہو جائے گی اور دوسرا جو 3 حیض ہے تو جس دن پیریڈ شروع ہوتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی بات ہے اس کو اپنا بھی اتنا سمجھے تو خیر ہے دوسری بات رجعی طلاق ہو رجعی طلاق کون سی ہوتی ہیں 2 طلاق کے شروع کی پہلی طلاق بھی رجعی ہے دوسری بھی رجعی ہے ایک مہینے کی ایک طلاق بھی رجعی ہے دوسرے مہینے کی طلاق بھی رجعی ہے یعنی پہلی 2 طلاقیں ہوں اس کے دوران عدت میں اگر شوہر رجوع کرنا چاہے تو ولی کو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے ولی کون ہوتا ہے عموماً لڑکی کا باپ ہوتا ہے تو کیا پتہ چلا کہ ایون 2 طلاقیں دینے کے بعد بھی شوہر کا حق باپ کے حق سے زیادہ ہے یہاں چھوٹی سی بات سمجھ لیں آگے جانے سے پہلے شادی کے بعد ماں باپ کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے سیکنڈری فیز پہ چلے جاتے ہیں رسپیکٹ اور چیز ہے محبت اور چیز ہے لیکن اطاعت ان معاملات میں نہیں ہوگی یعنی ایک لڑکی اور اس کا باپ اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ دو تو لڑکی نہیں چھوڑ سکتی یہ مراد ہے ٹھیک ہے پھر عورتوں اور مردوں کے حقوق کی شرعی اور قانونی حیثیت ایک جیسی ہے جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ادا کرنا واجب ہے اسی طرح مردوں پر عورتوں کے حقوق ادا کرنا بھی واجب ہے یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے عورت مرد میں ڈسکریمنیشن نہیں کی دونوں کا حق ہے مرد بھی عورت کو خوش رکھے عورت بھی مرد کو خوش رکھے رجعی طلاق میں عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے شوہر جب چاہے رجوع کر سکتا ہے خواہ عورت راضی ہو یا نہ ہو یہ سمجھنے کی بات ہے یعنی عدت کے دوران مرد جب چاہے رجوع کر سکتا ہے عورت منع نہیں کر سکتی کیوں کیونکہ طلاق مرد نے دی تھی اس نے واپس لے لی ہاں عدت ختم ہو جائے گی اب بات عورت کے پاس چلی جائے گی دلیل ان سارے مسائل کی سورۃ بقرہ کی آیت والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامهن ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر وبولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجة واللہ عزیز حکیم 228 نمبر آیت ہے سورت بقرہ کی، جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ تین حیض آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھے، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق کیا ہے، مراد ہے بچہ، پیٹ کا بچہ یعنی فیٹس جو اس کے پیٹ میں ہے، اسے چھپائیں، انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اگر ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر درجہ حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے کھل کر یہ باتیں بتا دیں۔ چند باتیں اس میں سے جو مزید سمجھ آتی ہیں، پہلی بات، حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، یعنی عورت طلاق کی عدت گزار رہی ہو یا بیوگی کی، اگر وہ پریگننٹ ہے تو بچے کے پیدا ہونے تک عدت ہوگی، یہ 9 ماہ تک بھی جا سکتی ہے، یعنی اللہ نہ کرے ابھی پریگننسی شروع ہوئی تھی تو طلاق کی یا پھر بیوگی کی صورت پیش آ گئی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ ابھی آخری دنوں میں تھی پریگننسی کے تو طلاق ہو گئی یا عدت آ گئی، بیوگی ہو گئی، تو پھر 1 مہینہ، 1 دن، 10 دن، بس جو ہی بچہ ڈیلیور ہوگا عدت ختم ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عدت کی حکمتوں میں سے ایک حکمت کیا ہے؟ استبرائے رحم، رحم کا پاک ہونا، یوٹرس کا پاک ہونا۔ تو بچے کے ڈیلیور ہوتے ہی خود ہی واضح ہو گیا، تو عام دنوں میں پھر 3 مہینے کیوں ہیں؟ کیونکہ 3 مہینے کی مدت تک پیریڈز اپ سائڈ ڈاؤن سائڈ ہو سکتے ہیں، اور اگر پیٹ میں بچہ نہ ہو تو 3 ماہ کے بعد تو پھر پیریڈز ہو ہی جاتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ غیر مدخولہ متعلقہ کی کوئی عدت نہیں، وہ طلاق کے فوراً بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے، وجہ پیٹ میں بچے کے ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جن عورتوں کو بڑھاپے کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا ہو ان کی عدت 3 ماہ کیوں بھائی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ یعنی ایک طرف آپ دیکھیں شوہر بیوی ساتھ رہے ہی نہیں تو کوئی عدت نہیں ہے، لیکن دوسری طرف ساتھ رہے، اب عورت بوڑھی ہے، اب اس کے پیریڈز بھی ختم ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی عدت 3 ماہ کیوں؟ پہلی بات دیکھیں کہ استبرائے رحم کی کیفیت اس میں بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو تو کئی عورتیں ان کو مینوپاز شروع ہوتا ہے، 2-3 سال بعد دوبارہ پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، کئی عورتیں عام دنوں میں کچھ نہیں ہوتا لیکن کسی شوق سے گزرتی ہیں، غم سے گزری، کوئی اب نارمل کنڈیشن آئے، اسپیشلی رمضان وغیرہ کبھی آئے تو اس میں شروع ہوتے ہیں، تو یہ کہہ لیجئے کہ فار سیفٹی میئرس۔ پھر دوسری بات ہے کہ عدت کا ایک دوسرا مقصد عورت کو شوق اور صدمے سے نکالنا بھی ہوتا ہے، تو عورت جتنا زیادہ وقت مرد کے ساتھ گزارتی ہے اتنا زیادہ اس کو چھوڑتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، تو لہٰذا بڑھاپے کی وجہ سے عدت ختم نہیں ہوتی، وہ رہے گی۔ اب عدت ہوتی کیا؟ ویٹنگ پیریڈ ہے، اب اس کو آپ دوسرے مسائل میں نہ لیں، لیکن عدت بہرحال کہہ لیجئے کہ عدت وہ وقت ہے جس کے دوران کوئی عورت نکاح دوسرا نہیں کرتی۔ رحم میں یعنی یوٹرس میں خلق کو نہ چھپانے کا مطلب ہے کہ طلاق کے بعد عورت کو جتنے حیض آئیں وہ سچ سچ بتانے چاہیے، بس اگر کوئی عورت خود بھی رجوع کرنے کی خواہش مند ہو تو 3 حیض گزرنے کے باوجود یہ کہہ دے کہ 1 یا 2 حیض آئے ہیں، یا اگر خود عورت رجوع کرنا پسند نہ کرتی ہو تو 1 یا 2 حیض آنے پر ہی کہہ دے کہ 3 حیض آ چکے ہیں، تو ایسا کرنے سے منع فرمایا گیا۔ یعنی ایک مطلب یہ ہے کہ پیریڈز ہوتے ہیں تو عورت، کبھی کبھی مہینے سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، کبھی لانگ ٹائم بھی چلتے ہیں، پیریڈز کو دیکھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے 3 ماہ سے زیادہ بھی گزر جائیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مطلب حمل کا موجود ہونا یا نہ ہونا بھی ہے، دونوں صورتیں موجود ہیں۔ تو بات واضح ہے کہ ایسے معاملات میں بھی کسی سے بات چھپائی نہیں جائے گی، ریئلٹی پہ بیسڈ ہوگی۔ پھر رجعی طلاق، وہ طلاق جس کے بعد رجوع کرنے کی اجازت ہے، اس کے مواقع ساری زندگی میں صرف 2 ہی ہیں، یعنی 2 طلاقوں کے بعد مرد کے پاس رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری طلاق جسے طلاق بائن کہتے ہیں، لکھ لیں، اسی کو بتا بھی کہتے ہیں، بائن یا بتا، بتا اس لیے بولتی ہوں کہ بتا سے پتا کٹ گیا، یاد رکھنے کے لیے آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں کہ طلاق بائن وہ ہوتی ہے تیسری طلاق جس کے بعد دوبارہ رجوع کا حق ختم ہے، اس سے پہلے کی 2 طلاقیں جو ہوتی ہیں اس کو رجعی طلاقیں کہتے ہیں۔ تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق باقی نہیں رہتا بلکہ میاں بیوی میں مستقل علیحدگی ہو جاتی ہے۔ طلاق دینے کے بعد عورت کو دیا ہوا مہر یا دوسرا سامان زیست، مثلا जेवर या कपड़े वगैरह वापस नहीं लेने चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, गिन गिन के निकलवाते हैं, पहले देते हुए कोई हद नहीं है, दूसरों को दिखाना था शोहरत ही, फिर बाद में कहते हैं वो किधर है और वो किधर है। तो जब औरत को आपने दे दिया तो अब वापस नहीं लेंगे। फिर अगली चीज, अगर कोई मुतल्लिका खातून, मुतल्लिका कौन हुई, तलाक याफ्ता, दूसरा निकाह कर ले और दूसरा शोहर सोहबत के बाद अपनी आजाद मर्जी से उसे तलाक दे दे, तो मुतल्लिका खातून इद्दत गुजरने के बाद अपने पहले शोहर से निकाह कर सकती है। बात समझे आप, कोई तलाक याफ्ता औरत दूसरा निकाह कर चुकी यानी इद्दत से गुजर गई, दूसरा निकाह हुआ, अब दूसरा शोहर बगैर किसी प्री प्लानिंग के, जिसको लोग हलाला कहते हैं, बगैर किसी प्लानिंग के अपनी मर्जी से तलाक दे दे, तो मुतल्लिका औरत अब दोबारा इसकी इद्दत से फारिग होगी, तो पहले शोहर से निकाह कर सकती है। इसकी दलील, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तन्किह ज़ौजन ग़ैरहु फ़इन तल्लक़हा फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजा इन ज़न्ना युक़ीमा हुदूदल्लाह व तिल्का हुदूदुल्लाही युबय्यिनुहा लिक़ौमी यालमून। सूरह बकरा आयत 230, 230। अगर किसी शौहर ने अपनी बीवी को तीसरी तलाक दे दी तो वो औरत फिर इसके लिए हलाल ना होगी, इल्ला ये कि इसका निकाह किसी दूसरे शख्स से हो और वो इसे अपनी आज़ाद मर्जी से तलाक दे। तब अगर पहला शौहर और ये मुतल्लिका औरत दोनों ये ख्याल करें कि हुदूद इलाही पर कायम नहीं रह सकेंगे, तो इनके लिए एक दूसरे की तरफ रजू कर लेने में कोई हर्ज नहीं। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें जिन्हें वो इन लोगों की हिदायत के लिए वाज़े करता है जो इसकी हदों को तोड़ने का इंजाम जानते हैं। बात वैसे, तीसरी तलाक के बाद औरत अगर दूसरी जगह निकाह करके फिर वहां से नेचुरली बगैर किसी प्लानिंग के आजाद हो जाए, तो फिर पहले शोहर से रुजू तो नहीं होगा, फिर दोबारा निकाह होगा। अच्छा, अब आप देखिए फर्क क्या है, तलाक हुई, एक हो गई, दूसरी भी हो गई, 3 महीने के अंदर अंदर आप कह लीजिए कि गेंद मर्द के कोर्ट में है, एनी टाइम किसी को बताने की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं, वो औरत से रजू कर सकता है। दूर है तो मुंह से भी कह सकता है कि मैं रजू करता हूँ, नियत कर लेता है, इरादा कर लेता है, तो रजू हो गया। लेकिन जूं ही 3 माह गुजर गए, अब गेंद औरत के कोर्ट में चली गई, अब वो यस भी कह सकती है, नो भी कह सकती है, ये मुराद है इससे। अगर मर्द चाहे तो औरत को इस दवाजी जिंदगी खत्म करने का इख्तियार दे सकता है। इस सूरत में औरत का फैसला कतई तौर पर नाफिजुल अमल होगा, यानी मर्द बीवी को खुद ही कह दे कि तुमने रहना है तो रह लो, छोड़ना है तो छोड़ दो। ये सूरत अलहज़ाब की आयत नंबर 28 है। या अय्युहन्नबी कुल लिअज़्वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयात अद्दुनिया वज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्ते कुन्ना वो सर्रह कुन्ना सराहन जमीला। ए नबी, अपनी बीवियों से कहिए अगर तुम दुनिया और उसकी जीनत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर भले तरीके से रुख्सत कर दूं, और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और दार आखरत की तालिब हो तो जान लो कि तुम में से जो नेकुकार हैं अल्लाह ने इनके लिए बड़ा अजर तैयार किया है। तो क्या पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अपनी बीवियों को देखा, दुनियावी मैटर था ना, दुनिया की चीज़ों की तलब थी तो इजाज़त दे दी। इसी तरह अगर कोई मर्द देखता है कि एक औरत है, उसका मिजाज ही नहीं सीधा हो रहा, उसको रहने नहीं, उसके मुतालबे ही बहुत हैं, उसको गिले और शिकवे ही बहुत हैं, और वो ना रहती है ना रहने देती है, तो मर्द उसको कह सकता है कि बेगम आप फैसला कर लीजिए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप नहीं रहना चाहती तो आप जा सकती हैं। यानी एक किस्म की ये भी एक थोड़ी सी थ्रेटनिंग है कि फिर आप चली जाइए, अगर आपको नहीं रहना तो फिर आप मुझे छोड़ दीजिए। तो ये नौबत जब आ जाए तो फिर उसके लिए इंसान को अल्लाह ताला ने ये रास्ता दिखाया। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े की सूरत में शरई अदालत में जाने से पहले अपने अपने खानदान में से एक एक नेक और मामला फहम आदमी को बतौर सालिस मुकर्रर करके मुसालहत करने का हुक्म है। एकदम नहीं दोनों को छोड़ देना चाहिए। देखिए, जब दोनों के बीच में गड़बड़ होती है ना तो दिमाग दोनों का ही नहीं चलता। झगड़ों में सबसे पहले जो चीज़ बंदे से छिनती है ना, वो सही फैसला करने की तौफीक छिनती है। गुस्से की हालत में, जज्बातियत की हालत में, अग्रेसिवनेस की हालत में सबसे ज़्यादा इंसान गलत फैसले करता है। अल्लाह ताला ने ऐसे झगड़ने वालों को तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि क्या कहा कि इन दोनों को समझाओ, तौर तरीके से बात करें और इनको किसी तीसरे से, और तीसरा बंदा कौन हो, पता चला वो उनसे भी ज्यादा बेवकूफ है। लड़की की माँ है तो वो भी जज्बाती होगी, लड़के का बाप है तो जज्बाती होगा, कोई थर्ड समझदार जीरक, हर सोसाइटी में हर फैमिलियों में कुछ समझदार लोग होते हैं, बहुत जीनियस किस्म के, तो ऐसे लोगों को थर्ड पर्सन के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। इसकी दलील सूरत निसा में है, वइन खिफ्तुम शिकाका बैनिहिमा फबसु हकमा मिन अहलिही व हकमा मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ्फिकिल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाहा काना अलीमन खबीरा। आयत 35 है सूरत निसा की। और अगर तुम लोगों को मियाँ बीवी के ताल्लुकात बिगड़ जाने का अंदेशा हो तो एक सालिस मर्द के रिश्तेदारों में से, एक सालिस औरत के रिश्तेदारों में से मुकर्रर करो, यानी दो लोग होंगे, एक उसकी तरफ से गैर जानिबदार, एक इनकी तरफ से, वो दोनों यानी सालिस या ज़ौजैन इस्लाह करना चाहेंगे तो अल्लाह ताला इनके दरमियान मुवाफ़क़त की सूरत पैदा कर देगा। मुवाफ़क़त क्या होती है, इसका रूट क्या होगा, वाओ फाकाफ वफा। देखिए ये जो मवाफकत है ना, वक्फे का लफ्ज़ सुना आपने, बेसिकली वक्फा समझिएगा, वक्फा, मवाफकत, दो चीजों का मिलना, ठीक है, एक चीज दूसरी से दो रायों का मिल जाना, वक्फे को भी छोड़ दीजिए, वाओ फाकाफ वफाका, ठीक है। तो क्या पता चला कि शौहर बीवी के बीच में सुलह हो सकती है अगर ठंडे दिमाग के साथ दोनों तरफ से समझदार लोग बैठे और बात को पेश करें। एक से ज्यादा बीवियां रखने वाले शौहर से अगर किसी बीवी को किसी वजह से बदसलूकी और बेरुही का खतरा हो और वो बीवी अपने हकूक छोड़कर अपने शौहर के साथ जिंदगी बसर करने पर आमादा हो तो शौहर को इसे तलाक ना देने की तरगीब दिलाई गई है कि बीवी एक से ज्यादा है। अब बीवी को लगता है कि ये मेरा हक मार देगा, मेरी बारी भी उसको दे देगा, कुछ और भी हो सकता है, तो वो बीवी अपने हकूक छोड़ दे और शौहर के साथ रह सकती है। यानी आप ये कह लीजिए कि दो बीवियां, अब पहली बीवी को एहसास होता है कि मेरा शौहर मेरे से ज्यादा उसके साथ खुश रहता है, अब इस वजह से ये मुझे तलाक दे देगा, तो बीवी तलाक का तमगा लेकर क्या करेगी, वो कहती है जाओ तुम मेरी बारी भी उसके साथ गुजार लो। मियाँ बीवी के दरमियान बिगाड़ की सूरत में एक दूसरे के साथ खुदा तरसी का तर्ज अमल इख्तियार करने का हुक्म है, यानी ऐसे वक्त में अल्लाह से डरो, ज्यादती ना करो किसी पे। इन सारी बातों की दलील सूरत निसा 128, वइन इमरातु खाफत मिन बालिहा नशूज़न औ इरादन फला जुनाह अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा वसुलहु खैर वख़दिरतिल अन्फुसु शर्र वइन तुहसिनु वतत्तकू फइन्नल्लाह खबीरा। जब किसी औरत को अपने शौहर से बदसलूकी या बेरुखी का खतरा हो तो कोई हरज नहीं, कोई मुजायका नहीं, अगर मियाँ और बीवी कुछ हकूक की कमी और बेशी पर आपस में सुलह कर लें, सुलह बहरहाल अलहदगी से बेहतर है, नफ्स तंग दिली की तरफ जल्द माइल हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम लोग एहसान से पेश आओ और खुदा तरसी से काम लो तो यकीन रखो अल्लाह तुम्हारे इस नेक तर्ज अमल से बेखबर नहीं होगा। कितनी खूबसूरत बात है, देखिए इसको कहते हैं मॉडरेशन। हमारा इस्लाम हर किस्म के हालात में बेहतरी की गुंजाइश चाहता है, बेहतर तरीके से काम हो, काम को बिगाड़ो नहीं, उसको ठीक रखो। बस लोग ठीक करने से ज्यादा उस चीज को और ज्यादा बिगाड़ लेते हैं। अब यहाँ देखिए बार बार तंग दिली की बात है ना, शुख शुख के बहुत मुख्तलिफ एंगल होते हैं। बस आप देखिए कि औरत की तंग दिली क्या है, बीमार है। अब एक औरत है बीमार रहती है, वो वैसे ही बेचारी इस काबिल नहीं है कि शौहर का हक पूरा करे, तो फिर तलाक लेकर क्या करेगी, वो कहती है कि आप दूसरी बीवी के साथ रह लें। बुढ़ापा है बहुत, या बदसूरती के बावजूद मर्द से इसी मोहब्बत और रगबत का तकाजा करे जो सेहतमंद जो नौजवान या खूबसूरत बीवी के लिए हो सकती है। और मर्द की तंगदिली क्या है कि नई शादी के बाद पहली बीवी के ज्यादा से ज्यादा हकूक कम करने की कोशिश करे और इसकी मजबूरी, बीमारी, बुढ़ापा या बदसूरती से नजायज फायदा उठाए। देखिए इस्लाम किसी पे जुल्म नहीं चाहता, हर एक को उसका हक दो। मर्दों पे भी जुल्म है अगर उनको नकचड़ी और लड़ाकी बीवियां मिल जाएं और वो कभी खुश ही नहीं होती। एक बीवी बीमार है, मर्द उसकी खिदमत करता है, उसके साथ अच्छा मामला करता है, तो क्या फिर उसके अपने जज्बात नहीं। हमारा माशरा इस मामले में बहुत जालिम है, दूसरी शादी के नाम पे तो ऐसे लग जाता है कि शायद किसी ने किसी के ऊपर ज्यादती कर दी। हालांकि एक मर्द है, बीवी बीमार है, उसकी खिदमत करता है, उसको डॉक्टर्स पे ले जाता है, कुछ भी, तो क्या अब उसका हक नहीं है कि वो अपने साथ एक सेहतमंद बीवी को भी रख ले? लेकिन इस चीज पे बड़े बड़े लोगों का दिल तंग हो जाता है। मुझे छोड़ दो फिर करो। तो भाई आपको छोड़ के जो करनी है तो आपके साथ कर रहे हैं, आपने इनसे छोड़ के अपने आप को कहाँ फिट करना है? तो लिहाजा ऐसे मामलात में हमेशा खुला दिल रखें, और इसको बेहतर तरीके से समझने का तरीका क्या है, अपने आप को अगले की जगह पे ले आओ। अगर मैं उसकी जगह पे हूं तो क्या करूं? बाद जब आप देखिए, अल्लाह ना करे किसी औरत के भाई के साथ ये इशू हो कि उसकी भाभी बीमार रहती है या उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो हम क्या चाहेंगे कि भाई का घर आबाद हो, उसके बच्चे हों। चले बच्चा नहीं है, ये भी एक मिसाल इसमें हो सकती है। अब एक औरत है, उसके बच्चे नहीं है, वो पैदा नहीं कर सकती, तो क्या उसके मर्द को दूसरी शादी करने का हक नहीं होना चाहिए? हम तो मेरा हाल इस पे मरने मरने को तैयार हो जाए, क्या हरज क्या है, क्या आपका क्या ले लेगा वो? लेकिन लोग कहेंगे नहीं, इसको छोड़ो फिर लो। हालांकि अगर दूसरी शादी करता है, कोई बच्चा होता है, तो हो सकता है वो इसका भी सौतेला बेटा बन के इसकी भी कल बुढ़ापे में खिदमत करे। लेकिन इन बातों में हमारा मास्टर बिल्कुल स्पार्ट है और इस बात को यानी सुनना भी पसंद नहीं करते। इसी तरह बाज मर्द है, शादियां कर लेते हैं, उनको बीवियों से रगबत ही नहीं होती, ख्वाहिश ही नहीं उनके दिल में। अब ऐसी औरतें सारी जिंदगी वो एक तीसरी टांग की तरह बेकार साथ लटकी रहती हैं। आप औरत से पूछिए कि अगर आपकी जरूरियात हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं, तो आप इससे आज़ादी लेकर दूसरे मर्द से शादी करें। तो बहरहाल ये जुल्म हमारे माशरों में बहुत आम है, अल्लाह ताला इस पे दिल खोल दे लोगों के। तलाक देना सिर्फ मर्द का इख्तियार है, औरत का नहीं। इसके नीचे एक जुमला लिख लें, तलाक देना सिर्फ मर्द का इख्तियार है, औरत का नहीं, मगर तलाक मांगना औरत का इख्तियार है, मर्द का नहीं है। ऑपोजिट इससे, यानी मर्द तलाक दे सकता है, औरत तलाक मांग सकती। मर्द नहीं तलाक मांग सकता कि तुम खुदा के लिए मुझे तलाक दे दो, ठीक है, ये मतलब है। तो बराबरी होगी ना। फिर इसी तरह से देखिए, सोहबत से कबल अगर कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक दे दे तो औरत पर कोई इद्दत नहीं, तलाक के फौरन बाद औरत दूसरा निकाह कर सकती है। सोहबत से कबल दी गई तलाक में हक के रजू बाकी नहीं रहता। अब सोहबत से कबल से मुराद क्या है? निकाह हो गया, बस जगह ऐसा हो जाता है, बाहर के मुल्कों में रहते हैं, कोई पेपर का मामला, पेपर वर्क का मामला, कुछ भी, निकाह कर दिया, चले जी पेपर्स बन जाएंगे, कुछ हो, बाद में कोई गड़बड़ हो गई, आ नहीं सके, वो बुला नहीं सका, या वैसे ही कोई आपस में रंजिशें हो गई, अब उसको तलाक होती है, तो किसी किस्म की कोई इद्दत नहीं है, तलाक के अगले ही दिन मर्द औरत दूसरी शादी कर सकती है। दूसरी बात, सोहबत से कबल दी गई तलाक में हक के रजू बाकी नहीं रहता। क्यों? नोट कीजिए, देखिए सेम बात है, सोहबत नहीं हुई, रुख्सती नहीं हुई, एक मर्द अमेरिका बैठा हुआ है, औरत पाकिस्तान में है, साल 6 महीने देखा, बात नहीं बनी, तलाक दे दी। अब जो ही मर्द तलाक देता है, तब वो दोबारा उसको अगले फोन पे ये नहीं कह सकता मैं रजू करता हूँ, क्योंकि रजू किस चीज से करना है, पास तो वो है ही नहीं है। तो लिहाजा ऐसी जरूरत में एक दफा तलाक कह दी तो फिर तलाक हो गई। इसकी दलील जो है सूरत अल-अहज़ाब आयत 49, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मोमिनाति सुम्मा तल्लक्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ली अन तमस्सूहुन्ना फ़मा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअतदूनहा फ़मत्तिउहुन्ना वसर्रिहूहुन्ना सराहन जमीला। ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करो और फिर इन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो तो तुम्हारी तरफ से इन पर कोई इद्दत नहीं जिनके पूरा करने का तुम मुतालबा कर सको, लिहाजा इन्हें कुछ माल दो और भले तरीके से रुख्सत कर दो। बात वाज़ेह, यदि हक के रजू फिर नहीं, बस फिर उसमें उनको अलग कर दिया जाएगा। उजलत, उजलत कहते हैं जल्दी को, अजला से आजिला, यानी जल्दी में या गुस्से में बिला सोचे समझे तलाक देना मना है, दौराने हैज तलाक देना मना है, जिस तोहर में औरत से सोहबत की हो इसमें तलाक देना मना है। सब कुछ किसकी प्रोटेक्शन के लिए? औरत की। बयक वक्त 3 तलाकें देना मना है, एक मौके पे 3 दफा और मर्द तलाक दे दे, चाहे 6 दफा कह दे, वो होगी एक ही, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए किसी मर्द को, ठीक है। तलाक देने के बाद इद्दत की मुद्दत का सही शुमार करना जरूरी है। कोई कहता है क्या जरूरत है इतनी बारीकियों में पढ़े, बस समझ आ गई है ना बात की, नहीं, फिर दिनों के साथ दिनों को गिने। रजई तलाक के बाद, ये कौन सी है? पहली 2 तलाक है। रजई तलाक के बाद औरत को इद्दत पूरी होने तक शौहर के घर पर रहना चाहिए। जी हमारे यहाँ कहाँ रहते हैं? तो लाख तो दूर की बात है, अभी तो बातें बिगड़ती हैं। तो अब्बा जी लड़की को ले जाते हैं, अम्मा जी कहती हैं मुझे अब इसको लाना ही नहीं है। ये गलत तरीके होते हैं। हम लोग बहुत सारे मामलात को इसीलिए सही तरह से नहीं कर पाते क्योंकि हम उसमें अल्लाह सुबहान तआला की दी हुई जो गाइडलाइन है उसको नहीं मानते। दौराने इद्दत रजई तलाक वाली औरत को घर से निकालना मना है। कोई दुनिया में ऐसी कोई आदमी साले कि एक औरत को तलाक लेने के बाद भी उसी मर्द के घर में देखा जाए? और यकीन करें कि इस्लाम ने ये जो सेफ्टी मेजर्स लिए हैं ना, अगर इस पे आज हम अमल करें ना, तो मोर देन 60-70% तलाकें वैसे ही खत्म हो जाए। साथ रहते हुए किसी वक्त तो गुस्सा दूर हो ही जाएगा ना, किसी वक्त तो एक दूसरे की जरूरत होगी। जब एक घर में तो रुजू करेंगे ना, अब लड़की पहुंच गई माँ बाप के घर में, लड़का जो है वो माँ के काबू में आ गया, या कोई किसी के भी काबू में ना आए, वैसे ही गुस्सा बहुत होता है। देखिए एक जुमला लिख लें, आपको फायदा होगा। शौहर बीवी का रिश्ता है ही साथ रहने का। जितना साथ रहेंगे, लड़े भिड़े मरें कुछ भी करें, लेकिन ये रिश्ता बना रहेगा। कुछ वक्त के बाद सेटल डाउन हो जाएंगे। जहां दोनों में जुदाई हो गई, ऐसे मर्द कमाने के लिए दुबई चले गए, चलो बैठ के कमाओ और बीवी को दिरहम भेजो, और दिरहम तो रहेंगे, शौहर के साथ ताल्लुक नहीं रहेगा। साथ रहेंगे मोहब्बत बढ़ेगी, दूर रहेंगे बेनियाजी बढ़ेगी। ये फितरी सी बात है। जब पहले ही झगड़े पड़ गए और लड़की को ले गए वापस आप, तो दोबारा तो आपने रास्ता खुद ही बंद कर दिया। फिर बाद में आप उस पर जो मर्जी कहें, आपको उसका हक नहीं रहेगा। फिर इसी तरह दुराने इद्दत रजई तलाक वाली औरत का नान नफका मर्द के जिम्मे वाजिब है। तलाक देने के बावजूद भी मर्द जो है वो औरत को खाना पीना उसकी चीजें देगा। तलाक के मामले में अल्लाह तआला के काम की खिलाफ वर्जी करने वाला फरीक जालिम है। अब ये इतने मसाइल एक एक आयत से निकलें। सूरह तलाक की पहली ही आयत है, या यूहन्नबी इज़ा तल्लक्तुमुन्निसा फतल्लिकूहुन्न लिद्दतिहिन्न वाक्सुल इद्दा वत्तकुल्लाह रब्बकुम ला तुख्रिजूहुन्न मिन बुयूतिहिन्न वला यख्रुजन इल्ला यातीन बिफाहिशतिन मुबैजिना वतिल्का हुदूदुल्लाह वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़सा ला तदरी लअल्लाहु युहदिसु बाद ज़ालिका अमरा। बहुत ही खूबसूरत और बड़ी मुश्किल आयत है ये, आपको पता है तजुबे के एतबार से भी। ए नबी, जब तुम लोग औरतों को तलाक दे दो तो इन्हें इनकी इद्दत के लिए तलाक दिया करो और इद्दत के जमाने का सही शुमार किया करो। अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। जमाने इद्दत में ना तुम इन्हें इनके घरों से निकालो और ना वो खुद निकले, इल्ला ये कि वो किसी सरीक, सरीक कहते क्लियर, किसी सरीक बुराई की मर्तकिब हों, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं, और जो कोई अल्लाह की हदों से तजावुज करेगा यानी ऊपर जाएगा उससे, वो अपने ऊपर खुद जुल्म करेगा। तुम नहीं जानते शायद इस रजई तलाक के बाद अल्लाह मुवाफकत की कोई सूरत पैदा कर दे। क्या पता चला? तलाक देने के बावजूद जब एक मर्द अपनी बीवी को घर में ही रखता है और एक औरत तलाक का लफ्ज़ सुनने के बावजूद भी उसी घर में रहती है, तो बहुत ज़्यादा मुवाफ़कत की गुंजाइश होती है। ये मुराद है। आज माँ बाप इस मसले पे अमल कर सकते हैं? हमारे तो मिजाजों में पहले ही बहुत गुस्सा होता है। रखें तो अच्छी तरह रखें, छोड़ें तो अच्छी तरह छोड़ें। अल्लाह ताला ने तो कुरान में कह दिया तस्रीहु बेहसान, छोड़ना है तो अच्छे तरीके से छोड़ो और रखना है तो उसको अच्छे तरीके से रखो। और ये कब होगा? जब मामला फहमी के साथ, हिकमत अमली के साथ कामों को किया जाएगा। निकाह के बाद अगर सोहबत करने से पहले, जबकि मेहर भी अभी मुकर्रर ना हुआ हो, कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे तो इस पर मेहर अदा करना वाजिब नहीं। अलबत्ता अपनी इस्तेआत के मुताबिक औरत को कुछ ना कुछ हदिया देना चाहिए। बात वाज़ है, क्योंकि जब ताल्लुक नहीं बनता ना, तो औरत की वैल्यू इतनी नहीं बिगड़ती। यानी अल्लाह ना करे किसी लड़की को सिर्फ रुखसती के बाद पलटा दिया जाए तो उसकी दोबारा शादी के ज्यादा चांसेस होते हैं। इल्ला ये कि किसी को बीवी बनकर वापस लौटाया जाए तो कम होते हैं। तो चूंकि इसमें नुकसान कम है और मर्द को फिर दोबारा भी कहीं शादी करनी है, तो हक मेहर अदा करना लाजिम नहीं। हाँ, को अपनी खुशी से ज्यादा दे दे तो उसकी बात है। ये सब मसाइल सूरत बकरा में गुजरते हैं। 236 आयत है, ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक्तुम अन्निसा मा लम तमस्सूहुन्ना औ तफ्रिदू लहुन्ना फरीदा वमत्तेउहुन्ना अलल मौसी कदरुहु वलल मुक्तिरी कदरुहु मताम बिल मारूफ हक्कन अलल मुहसिनीन। तुम पर कुछ गुनाह नहीं अगर अपनी औरतों को तलाक दे दो कबल इसके कि हाथ लगाने की नौबत आए या मेहर मुकर्रर हो। इस सूरत में ने कुछ ना कुछ देना जरूर चाहिए। खुशहाल आदमी अपनी कुदरत के मुताबिक और गरीब आदमी अपनी कुदरत के मुताबिक मारूफ तरीके से दे, ये नेक लोगों पर लाजिम है। बात वैसे है ना, मुश्किल तो नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरी सूरत, अब ये चार सूरतें कुरान की एक ही आयत में हैं, एक दो आयतों में साथ साथ ही हैं, और आप पढ़ चुके हैं सूरह बकरा तो आपको अब ये सब कुछ दोहरा ही लग रहा होगा। और याद रखिए कि तलाक का इशू बहुत सारा कुरान की आयतों से समझ आ जाता है, इसीलिए ये टॉपिक लंबा हो रहा है कि सिर्फ आप कुरान की आयतों को हल्की हल्की वजाहत से पढ़ते जाएंगे तो आपको इसमें इंशाल्लाह अपने लिए गाइडलाइन मिलेगी। तो अगला मसला क्या है कि निकाह के बाद अगर सोहबत करने से पहले जबकि मेहर मुकर्रर हो चुका हो कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दे तो इस पर नेस मेहर अदा करना होगा। आयत है 237, वइन तल्लक्तुमुहुन्न मिन कब्ल अन तमस्सुहुन्न वक़द फ़रदतुम लहुन्न फ़रीदतन फ़निस्फ़ु मा फ़रदतुम इल्ला याफून अव याफू वल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह वइन ताफू अक़रबु लित्तक़्वा वला तंसवुल फ़ज़्ला बैनकुम इन्नल्लाहा बिमा तअमलून बसीर। और अगर तुमने हाथ लगाने से पहले तलाक दे दी हो लेकिन मेहर मुकर्रर किया जा चुका हो तो इस सूरत में निस मेहर देना होगा। ये और बात है कि औरत दरगुजर से काम ले और मेहर ना दे, या वो मर्द जिसके हाथ में अक्दे निकाह है दरगुजर से काम ले और पूरे का पूरा मेहर दे दे, और तुम यानी मर्द नरमी से काम लो तो ये तकवा के ज्यादा करीब है। बाहमी मामलात में फैयाजी के तर्ज़े अमल को ना भूलो, बेशक जो कुछ तुम लोग करते हो अल्लाह ताला इसको देख रहा है। 237 सूरत बकरा। तो बात वाज़े, हम देखिए आपस के मामलात में भी फजल नहीं करते, कहाँ तलाक के मामलात में। अब निकाह के बाद सोहबत से पहले अगर मेहर मुकर्रर हुआ है तो फिर निस्फ क्यों देना पड़ेगा? इसलिए कि कुछ कंपनसेशन तो हो जाए। एक औरत के पास मर्द नहीं रहा तो कम से कम कुछ ना कुछ उसके माल में से उसको मिल जाए जिससे उसकी दिलजोई हो जाए। अब यहाँ आप लोग कुछ सवाल करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। पहली बात है कि क्यों देते हैं, यानी इनका सवाल है कि एक मर्द धमकी देता है तलाक की अक्सर, तो पहली बात है क्यों देता है। एक औरत होने के नाते तो आपको मुझे पहले अपना मुहासबा करना चाहिए कि कोई मर्द बेवकूफ तो नहीं है जो ऐसे ही खड़े खड़े हमें धमकी दे रहे हैं। दूसरी बात देखिए उसका बैकग्राउंड क्या है। तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि आदत बिगड़ी है तो ये आदत ठीक की जा सकती है। एक धमकी के बाद आप कहते दे दो, दे दी होगी तो दे देगा, लेकिन हर वक्त आपको वो नहीं देगा। बास लोग अपनी कमजोरी की वजह से भी देते हैं, जो जितना कमजोर और दबा होता है ना वो उल्टा सूखा रोप डालता है। जिन्होंने देनी होती है ना वो धमकियां नहीं देते, वो तलाक ही दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें औरत को नाजायज सुनना भी नहीं चाहिए और ना दूसरी तरफ से। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे ये दो टॉपिक कवर हो गए। अल्लाह ने चाहा तो कल का टॉपिक बड़ा अहम है, कल के लिए आप औरों को भी बुलाइए क्योंकि जनरल टॉपिक हैं बीवी और शौहर की अच्छी सिफात। आप कह लीजिए कि वो टॉपिक्स हैं कि जो अगर आ जाएं तो उसके बाद फिर तलाक की नौबत बहुत कम आती है। ठीक है, तो कल अल्लाह ताला ने चाहा तो हम इसको पढ़ेंगे, और अल्लाह ताला हमारे वक्त में भी बरकत दे, सेहत में आफियत में दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।